डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट लिटरेचर, व्याख्यान 21, इफिसियंस 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह न्यू टेस्टामेंट इतिहास और साहित्य पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन द्वारा इफिसियों की पुस्तक पर व्याख्यान 21 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और शुरुआत करें। आइए आगे बढ़े और शुरुआत करें। आज हम जो करेंगे वह यह है कि मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हमने पिछली कक्षा की अवधि इफिसियों की पुस्तक के बारे में बात करके शुरू की थी और इफिसियों के बारे में और भी कई चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। हम आज उस पर गौर करेंगे। हालांकि मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि इफिसियों पर सामग्री सोमवार की परीक्षा में शामिल नहीं होगी, वह परीक्षा क्रमांक 3 पर होगा। लेकिन मैं इफिसियों की हमारी चर्चा को समाप्त करना चाहता हूँ और मैं आपको परीक्षा के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने के लिए फिर से कक्षा के अंतिम 5 मिनट देना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में कुछ बहुत ही संक्षिप्त बातें कहूँगा। वास्तव में मुझे कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आप में से कुछ के पास कल रात के समीक्षा सत्र से प्रश्न हो सकते हैं, आपके नोट्स में कुछ छूट गया है या कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप स्पष्ट नहीं हैं या कुछ और। इसलिए मैं आपको कक्षा के अंत में ऐसा करने का मौका दूंगा। लेकिन आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और फिर हम इफिसियों की पुस्तक को देखेंगे। पिता, हमें शारीरिक और बौद्धिक रूप से बनाए रखने और नए नियम के रूप में हमारे साथ आपके संचार के बारे में सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम उस दूरी के बारे में और अधिक जागरूक हो जाएंगे जो हमें मूल पाठकों और मूल संदर्भ से अलग करती है, ताकि हम बेहतर ढंग से समझ सकें कि वह पाठ आज भी आपके लोगों के रूप में, आपके निरंतर रहस्योद्घाटन के रूप में हमसे कैसे बात करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें इफिसियों की पुस्तक की अधिक सराहना और समझ होगी और उसके प्रकाश में इस दुनिया में आज आपके लोगों के रूप में जीने का क्या मतलब है। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। ठीक है, हमने पिछली कक्षा की अवधि में इफिसियों की पुस्तक के बारे में बात करना शुरू किया। हमने इसकी संरचना और इस तथ्य के बारे में संक्षेप में बात की कि इफिसियों को स्वाभाविक रूप से 2 मूल रूप से समान खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 3 अध्याय संकेत के अनुरूप हैं, जो एक भारी धार्मिक खंड है जो दर्शाता है कि हमारे पास मसीह में क्या है और हम मसीह के साथ एकजुट होने के आधार पर कौन हैं। दूसरा खंड अध्याय 4 से 6 तक उसके नैतिक प्रभावों को स्पष्ट करता है, वह अनिवार्य है या अध्याय 1 से 3 के परिणामस्वरूप क्या सच होना चाहिए, इसके संकेत के परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से अनिवार्यता का पालन करना चाहिए। हमने यह भी थोड़ा देखना शुरू किया कि वह कौन सा अवसर रहा होगा जिसने पॉल को इफिसियों की पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया, और हमने कहा कि कठिनाइयों में से एक यह है कि अधिकांश नए नियम के छात्र इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि पॉल ने इफिसियों की पुस्तक क्यों लिखी, और अनिश्चित हैं। जैसे कि कोई सटीक संकट या कठिनाई थी या किसी प्रकार की विचलित शिक्षा थी, जैसा कि हमने गलातियों की पुस्तक में देखा था, जहां गलातियों में यह पता लगाना बहुत आसान है कि समस्या क्या हो सकती है। लेकिन इफिसियों में आम सहमति नहीं बन पाई है, और अगर जो लोग सहमत हैं या सोचते हैं कि किसी प्रकार की समस्या है, वे इस बात पर सहमत नहीं हैं कि वास्तव में वह क्या है। इस वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि इफिसियों को वास्तव में इफिसस शहर के लिए लिखा गया था, लेकिन इसका मतलब एक गोलाकार पत्र था, यानी एक ऐसा पत्र जिसे एशिया माइनर में विभिन्न चर्चों के आसपास प्रसारित किया जाना था, और यही कारण है कि इफिसियों ने ऐसा नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई विशिष्ट समस्या या मुद्दा है जिसका वह समाधान कर रहा है। हमने कहा कि इसका एक अपवाद क्लिंटन अर्नोल्ड नाम का एक नया नियम विद्वान था, जो मैंने कहा था कि कैलिफोर्निया में टैलबोट थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ाता है, और उसने सुझाव दिया इफिसियन एक विशिष्ट मुद्दे या संकट को संबोधित कर रहे थे, और वह जादू से जुड़ा मुद्दा या समस्या थी। हमने जादू को उसी तरह देखा जैसा मेरा मानना है कि पहली सदी में इसे धार्मिक संदर्भ में देखा जाता होगा, न कि उस तरह जिस तरह हम आज इसे देखते हैं। हालांकि पहली सदी में जादू के कुछ पहलुओं को ग्रीको-रोमन दुनिया में भी नकारात्मक रूप से देखा जाता था, लेकिन अर्नोल्ड सुझाव देते हैं कि जादू के संदर्भ में जादू एक समझ है। यह इस समझ से शुरू होता है कि अनुभवजन्य दुनिया के पीछे पूरी दुनिया एक आध्यात्मिक दुनिया है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के आध्यात्मिक प्राणियों का वर्चस्व है, और इसलिए जादू ने जो किया वह नियंत्रित करने का एक तरीका था, या किसी की ओर से कार्य करने के लिए, या अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए इन आध्यात्मिक प्राणियों के साथ छेड़छाड़ करना या उनसे प्रार्थना करना, जिनके साथ आपकी नहीं बनती थी। तो उचित मंत्रों और दिव्य नामों और इस तरह की चीजों के उच्चारण से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दुनिया में हेरफेर कर सकता है, या अपने लाभ के लिए इसे नियंत्रित करने की उम्मीद कर सकता है, और फिर कभी कभी अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी। और इसलिए अर्नोल्ड सुझाव देते हैं कि जादू वास्तव में पहली शताब्दी के ग्रीको-रोमन दुनिया में बहुत प्रचलित और व्यापक था, खासकर एशिया माइनर या आधुनिक तुर्की के इस क्षेत्र में। तब उनका सुझाव है कि पॉल उन पाठकों को संबोधित कर रहे थे जो दुनिया पर नियंत्रण और प्रभुत्व रखने वाली इन बुरी शक्तियों से प्रभावित थे, या शायद उनके डर में जी रहे थे। और इसलिए अर्नोल्ड जो कर रहा है वह पाठकों को आश्वस्त करने के लिए लिख रहा है कि उन्हें इन आध्यात्मिक शक्तियों, इन शत्रु शासकों और आध्यात्मिक प्राणियों से डरने की जरूरत नहीं है, और उन्हें जीतने के लिए जादू का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने इन पर विजय प्राप्त की है, बुराइयों की शक्तियां। इसलिए हमने इफिसियों में सभी शक्ति भाषा को देखा, शासकों और अधिकारियों और शक्तियों पर जोर दिया, जिनके बारे में अर्नोल्ड कहेंगे कि ये शत्रु शक्तियां और शासक थे जिन्हें जादू ने नियंत्रित करने और हेरफेर करने की कोशिश की, ये शक्तियां और आध्यात्मिक प्राणी जो दुनिया के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि इफिसियन पाठकों को जादू का सहारा लेने या इन चीजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके बजाय यीशु मसीह ने उन पर विजय प्राप्त की है। इसलिए जैसा कि अर्नोल्ड सुझाव देते हैं, शासकों और अधिकारियों और शक्तियों से बहुत ऊपर बैठे यीशु मसीह का संदर्भ पॉल का यह दिखाने का तरीका है कि जादू के प्रति इस प्रवृत्ति, आध्यात्मिक दुनिया के प्रति इस व्यस्तता का मुकाबला किया जाए। अब जबकि यह बहुत आम हो गया है, वास्तव में इफिसियों पर मैंने जो कई किताबें पढ़ी हैं, वे अर्नोल्ड के दृष्टिकोण से आश्वस्त हैं कि पॉल इफिसियन ईसाइयों को एक बहुत ही विशिष्ट समस्या में संबोधित कर रहा है, जो जादू की समस्या है। मैं आपको इफिसियों को पढ़ने का एक अलग तरीका सुझाना चाहता हूं, और यह एक संभावित परिदृश्य से शुरू होता है कि इफिसियों में एक कारण से बहुत विशिष्ट स्थिति का अभाव है। मुझे लगता है कि इफिसियों और नए नियम के विद्वानों के बहुत से छात्र इफिसियों के पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्य नहीं, बल्कि एक विशिष्ट समस्या या मुद्दा, जैसे कि झूठी शिक्षा, नहीं ढूंढ पाए हैं, शायद इसलिए क्योंकि वहां कोई भी नहीं था, कोई भी वास्तविक विशिष्ट संकट या शिक्षा, जैसे कि गलातियों की पुस्तक में मिलती है। वास्तव में एक विशिष्ट स्थिति की कमी संभवतः इफिसियों की पुस्तक की पहली कविता या पहले दो छंदों में देखी जा सकती है, जहां यह शुरू होती है। यह वास्तव में पॉल के किसी भी अन्य पत्र, विशिष्ट पत्रों की तरह शुरू होती है, और यही पॉल शुरू होता है इफिसुस में रहने वाले और मसीह यीशु के प्रति विश्वासयोग्य संतों के लिए। परमेश्वर की इच्छा से पौलुस ने स्वयं को मसीह यीशु का प्रेरित बताया। हमारे पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्या इससे पाठकों की पहचान इफिसुस के संतों के रूप में नहीं हो गई? दिलचस्प बात यह है कि यह सेमेस्टर की शुरुआत में हमारी चर्चा से जुड़ा है कि नया नियम हमें कैसे पारित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास न्यू टेस्टामेंट के लेखकों द्वारा लिखे गए कोई भी मूल दस्तावेज नहीं हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास इफिसियों का मूल पाठ पॉल द्वारा लिखा गया मूल पत्र नहीं है। इसके बजाय हमारे पास उन पत्रों की प्रतियां हैं जो शुरुआती चर्च की प्रारंभिक शताब्दियों में संरक्षित थीं, क्योंकि उन्होंने उन्हें प्रिंटिंग प्रेस और अब कंप्यूटर के आगमन से पहले कॉपी किया था, जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचार करना या जानकारी प्रसारित करना पहले से कहीं अधिक आसान है। चर्च की प्रारंभिक शताब्दियों में वे केवल नकल करते थे, जो कई मायनों में काफी श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। उन्होंने नए नियम के दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाई, क्योंकि वे प्रसारित और आगे बढ़े और प्रारंभिक चर्च में फैलने लगे। अब जो दिलचस्प है वह यह है कि कुछ प्राचीनतम और जिन्हें बेहतर पांडुलिपियां माना जाता है, उनमें इफिसस में वह छोटा सा वाक्यांश नहीं है, और मैं उन पांडुलिपियों का अनुसरण करने के लिए इच्छुक हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि पॉल ने मूल रूप से इफिसुस में नहीं लिखा था, और शायद इफिसस शहर के महत्व के कारण सबसे अधिक संभावना यह है कि इसे बाद के किसी लेखक ने किसी समय जोड़ा होगा, जब इफिसियों की पुस्तक की नकल की जा रही थी और चारों ओर फैलाया जा रहा था। इसलिए मुझे विश्वास है कि पॉल विशेष रूप से इफिसस के चर्च को नहीं लिख रहा था। वास्तव में मुझे लगता है कि पॉल जानबूझकर यह पत्र लिख रहा था, जिसे हम इफिसियों को एक सामान्य पत्र के रूप में कहते हैं, जिसे चारों ओर फैलाया जाए और जितना संभव हो सके व्यापक रूप से पढ़ा जाए। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि वह आम तौर पर ग्रीको रोमन साम्राज्य में रहने वाले एशिया माइनर के इस हिस्से में रहने वाले ईसाइयों को संबोधित कर रहे थे। इफिसुस उन शहरों में से एक रहा होगा जहां यह पत्र पहुंचा होगा, लेकिन यह एकमात्र शहर नहीं था। फिर पॉल एक बहुत ही सामान्य पत्र लिख रहा था, किसी विशिष्ट समस्या या संकट या झूठी शिक्षा को संबोधित नहीं कर रहा था। मेरी राय में यह सिर्फ एक सुझाव था कि पॉल ने ईसाइयों को एक सामान्य पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें रोमन साम्राज्य के संदर्भ में, शाही रोम के संदर्भ में अपने विश्वास को जीने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसलिए पॉल ईसाइयों को उनके विश्वास में प्रोत्साहित करने के लिए एक सामान्य प्रोत्साहन पत्र लिख रहा है, क्योंकि वे ग्रीको रोमन साम्राज्य के संदर्भ में अपने विश्वास को जीने का प्रयास करते हैं। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि जिन पांडुलिपियों में इफिसस नहीं था वे इफिसस में क्या थीं और जिनमें थीं। मैं भौगोलिक रूप से निश्चित नहीं हूं कि वे कहां से आईं। यह जानना दिलचस्प होगा। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे जोड़े हैं जो इफिसस में नहीं हैं, जो इफिसस के क्षेत्र के आसपास उत्पन्न नहीं हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें यह शामिल है जो उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो मुझे नहीं पता। यह पता लगाना दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इफिसस में मौजूद पांडुलिपियों और जो नहीं हैं, और जिस क्षेत्र से वे आए हैं, उनके बीच कोई संबंध है या नहीं। आप सही हैं, यदि संभव हो तो इसका पता लगाना दिलचस्प होगा। क्या ऐसा कुछ है जो आपने कभी किसी अन्य में देखा है? हाँ, आपने नहीं। जहां तक मैं पॉल के पत्रों के बारे में जानता हूं, रोमनों को छोड़कर बाकी सभी में कुछ दिलचस्प बातें चल रही हैं, यह भी जहां तक उस वाक्यांश का सवाल है, रोम में। और दिलचस्प बात यह है कि रोमन्स अक्सर इफिसियों की तरह ही होता है। रोमन्स एक और पत्र है जिसके बारे में सटीक रूप से बताना बहुत मुश्किल है कि पॉल, ऐसा क्यों लगता है कि वह किसी विशिष्ट संकट या समस्या को संबोधित नहीं कर रहा है, क्योंकि वह गैलाटिया में है। तो दिलचस्प बात यह है कि दूसरे पत्र में रोम में या रोमनों की पुस्तक में जो कुछ भी शामिल है उसके बारे में कुछ प्रश्न हैं। अधिकांश अन्य पत्रों में मुझे नहीं लगता कि पॉल ने जो लिखा है उसमें कोई विसंगति या सवाल है कि क्या हमारे बाइबल में पाठकों की पहचान वही है जो पॉल ने वास्तव में लिखा था या नहीं। उनमें से अधिकांश मुझे लगता है कि हर कोई सहमत है कि वे सटीक विवरण हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है, इफिसियों और रोमियो और विशेष रूप से इफिसियों ही ऐसे हैं जिनके पास पांडुलिपियां हैं जो इस बात पर विभाजित हैं कि प्राप्तकर्ता का नाम वही था जो पॉल ने वास्तव में लिखा था। और इसलिए इफिसियों के मामले में मुझे लगता है कि आप एक अच्छा मामला बना सकते हैं कि इफिसस में वह वाक्यांश नहीं था। तो दूसरे शब्दों में, तकनीकी रूप से यह इफिसियों को लिखा पत्र नहीं है। तकनीकी रूप से यह एक सामान्य पत्र है जिसे पॉल ने कई चर्चों और ईसाइयों और एशिया माइनर के शहरों को लिखा था, जिनमें से निस्संदेह इफिसस उन शहरों में से एक रहा होगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि इफिसियन उन पुस्तकों में से एक है जहां पॉल और मैंने पिछले 3 वर्षों में इस पर अपना विचार बदल दिया है। लेकिन इफिसियन मुझे लगता है उन पत्रों में से एक है जिसमें पॉल किसी विशेष संकट को संबोधित नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उन संघर्षों से अवगत है जिनका आम तौर पर ईसाइयों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे बुतपरस्त रोम और रोमन साम्राज्य के शत्रुतापूर्ण माहौल में अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और इसलिए वह उन ईसाइयों को उनकी पहचान स्थापित करने में मदद करने के लिए, बुतपरस्त रोम में रहने के दबाव में रहने से निपटने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन का एक बहुत ही सामान्य पत्र लिखता है, और शायद उससे अधिक विशिष्ट कुछ भी नहीं। मेरी राय में यह इस बात का कारण होगा कि गलाटियन के विपरीत बहुत से विद्वानों को इफिसियों के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है, जहां हम आसानी से एक को निर्धारित कर सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमें संभवतः एक अलग कारण खोजने की आवश्यकता है कि शक्ति और ताकत और अधिकार पर इतना जोर क्यों है, और सभी अधिकारियों और शासकों और शक्तियों और इन आध्यात्मिक प्राणियों पर यीशु के शासन पर इतना जोर क्यों है पृथ्वी। यदि यह मुख्य रूप से जादू नहीं है तो पॉल क्या कर रहा है, वह ऐसी बात क्यों करता है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इफिसियों का ईसाई धर्म या इफिसियों ने यीशु मसीह के बारे में जो कहा है, वह पॉल के अन्य पत्रों में आपको जो मिलता है उससे कई मायनों में अलग है, जहां आपको यीशु पर मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में उतना जोर नहीं मिलता है, जिसने मानवता के पापों के प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन त्याग दिया है और इसलिए उन्हें उचित ठहराता है। आपको औचित्य की भाषा या उस तरह की भाषा नहीं मिलती जैसी आप यीशु को दाऊद के पुत्र मसीहा के रूप में पाते हैं। आपको वह भाषा इफिसियों में उतनी नहीं मिलती। इसके बजाय मसीह को शासक के रूप में, संपूर्ण ब्रह्मांड के लौकिक शासक के रूप में अधिक चित्रित किया गया है। फिर यह उससे थोड़ा अलग है कि उसे कैसे चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए 4 गॉस्पेल में, जहां यीशु को डेविड के पुत्र, अब्राहम के पुत्र, मार्क में पीड़ित सेवक आदि के रूप में चित्रित किया गया था आदि, यहां यीशु है संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक के रूप में, संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान के रूप में चित्रित किया गया। और इसलिए हमें पूछना होगा कि पॉल ने यीशु को इस तरह क्यों चित्रित किया। यदि यह जादू नहीं था जिसके कारण पॉल ने यीशु को पूरे ब्रह्मांड और इन शक्तियों और अधिकारियों, इन आध्यात्मिक प्राणियों पर शासक के रूप में चित्रित किया, तो पॉल को यह विचार कहां से मिला, वह क्या करने का प्रयास कर रहा है। तो आइए लौकिक मेलमिलाप के इस विचार पर वापस जाएं। मैंने आपसे कहा था कि इफिसियों का प्राथमिक विषय, मुझे लगता है, लौकिक मेलमिलाप है, अर्थात सभी चीजों का मेल हो गया है और पूरे ब्रह्मांड में सभी चीजों का ईसा मसीह के साथ मेल हो गया है, जो प्राथमिक विषय प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि वह विषय अध्याय 1 और छंद 9 और 10 से शुरू होता है। अब फिर से मैं यह आखिरी कक्षा अवधि पढ़ता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनता हूँ। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा का रहस्य हमें अपनी उस अच्छी इच्छा के अनुसार बताया है जो उसने मसीह में प्रकट किया था। एक योजना के रूप में, दूसरे शब्दों में उसकी इच्छा, यहाँ उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा समय की परिपूर्णता के लिए एक योजना है, ताकि उसमें मौजूद सभी चीजों को इकट्ठा किया जा सके या सारांशित किया जा सके या उनका समाधान किया जा सके, जो कि मसीह में है, स्वर्ग की चीजें और पृथ्वी पर की चीजें। मेरी राय में इसे इफिसियों के संपूर्ण विषय के सारांश के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात ईश्वर की इच्छा। उसका इरादा यह है कि अंत हर चीज को यीशु मसीह में अपना उचित स्थान मिलेगा, अर्थात सभी चीजों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा, ब्रह्मांड में सभी चीजों को, पृथ्वी पर और स्वर्ग में सभी चीजों को सारांशित किया जाएगा और यीशु मसीह में अपना सही स्थान, मसीह के साथ सही संबंध मिलेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि बाद में अध्याय एक में पॉल आश्वस्त हो गया कि वह योजना पहले ही लागू हो चुकी है। अब फिर से यह पॉल का संस्करण होने जा रहा है। याद रखें, हमने पहले ही बात की थी, लेकिन अभी नहीं, कि यीशु ने कहा था कि राज्य पहले से ही यहाँ था, लेकिन यह अभी तक नहीं आया है। यह एक तरह से पॉल का संस्करण है। पॉल आश्वस्त है कि भविष्य में उस दिन जब ईश्वर सभी चीजों को मसीह के साथ मिला देगा, संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट लिया जाएगा और मसीह के साथ एक सही रिश्ते में डाल दिया जाएगा। पॉल आश्वस्त है कि यह पहले से ही गति में स्थापित हो चुका है, क्योंकि यहाँ वह क्या कह रहा है, मैंने अभी आपके लिए अध्याय एक श्लोक 9 और 10 पढ़ा है। यहाँ बाद में कुछ श्लोक हैं। यह आपके नोट्स में अध्याय एक और छंद 19 और अगले खंड 19 से 21 से शुरू होता है, और वह चाहते हैं कि उनके पाठक समझें कि उनकी शक्ति की अथाह महानता क्या है। हम जो विश्वास करते हैं उनके लिए उनकी शक्ति की भाषा फिर से वही है। उसकी महान शक्ति के कार्य के अनुसार वह ईश्वर की ओर संकेत कर रहा है। परमेश्वर ने इस शक्ति को मसीह में कार्य करने के लिए तब डाला जब उसने मसीह को मृतकों में से जिलाया, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने और उसे स्वर्गीय स्थानों में दाहिने हाथ पर बैठाया, हर नियम और अधिकार और शक्ति और प्रभुत्व से बहुत ऊपर और ऊपर प्रत्येक नाम जिसका नामकरण किया जाता है, न केवल इस युग में बल्कि आने वाले युग में भी। तो पॉल ने अभी क्या कहा है? उन्होंने कहा, ईसा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्ग में उनके उत्थान के साथ यह लौकिक मिलमिलाप पहले ही शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु अब परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्ग में आसीन होने के कारण, पॉल ने कहा कि उसे हर शासक और अधिकार और प्रभुत्व से बहुत ऊपर उठाया गया है। तो यह मिलमिलाप जो परमेश्वर का है, पॉल का विचार मसीह के साथ मिलमिलाप होगा। पॉल आश्वस्त है कि यह पहले ही मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हो चुका है, और उसे पूरे ब्रह्मांड पर भगवान के रूप में स्वर्ग में बैठा रहा है। अब तो पॉल को यह भाषा कहाँ से मिलती है कि यीशु इस शक्ति की भाषा है और यीशु ब्रह्मांड का प्रभु है, और ये सभी शक्तियाँ और शासक और प्रभुत्व और अधिकारी यीशु मसीह के अधीन हैं। उसे वह कहाँ से मिलता है? और वैसे मुझे बस इतना कहना है, मैं पूरे इफिसियों में आश्वस्त हूँ जब पॉल शासकों और प्रभुत्व और अधिकारियों के बारे में बात करता है, वह इसके बारे में बात कर रहा है, वह रोमन साम्राज्य जैसे भौतिक अधिकारियों और शासकों की बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि वह हमेशा इन आध्यात्मिक शक्तियों और प्राणियों का जिक्र कर रहे हैं जो एक तरह से ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। लेकिन उसे यह भाषा कहाँ से मिलती है? पॉल वास्तव में पुराने नियम में वापस जा रहा है और यह प्रदर्शित करने के लिए भजनों का सहारा ले रहा है कि यीशु ब्रह्मांड का लौकिक शासक है। ध्यान दें कि पॉल ने अभी कहा उन छंदों में जो मैंने अभी पढ़ा कि यीशु को ऊंचा किया गया है और भगवान के दाहिने हाथ पर बैठाया गया है। उसे भगवान के दाहिने हाथ पर बैठे होने का विचार कहाँ से मिलता है? यह भजन 110 से आया है जो एक भजन है जो वास्तव में राजा दाऊद के पुत्र को संदर्भित करता है जो अंततः पूरी दुनिया पर शासन करेगा। और इसलिए भजन 110 कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, अर्थात परमेश्वर ने प्रभु मसीहा को संबोधित किया, मेरे दाहिने हाथ पर तब तक बैठो जब तक मैं तुम्हारे शत्रु को अपने चरणों की चौकी न बना लूं। खैर, क्या यह वही नहीं है जो पॉल ने कहा था? उन्होंने कहा कि यीशु मसीह दाहिनी ओर बैठे हैं, हर शासक और प्रभुत्व से बहुत ऊपर। जो शत्रु अब उसके चरणों की चौकी हैं, वे स्वर्गीय क्षेत्र के आध्यात्मिक शासक, अधिकारी और शक्तियां हैं। तो मूल रूप से पॉल चित्रण कर रहा है, मुझे लगता है कि उसे शासकों और अधिकारियों और शक्तियों की यह धारणा कहां से मिल रही है, और ब्रह्मांड के लौकिक शासक के रूप में यीशु का यह विचार जादू के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि वह पुराने नियम में वापस जा रहा है और भजन 110 जैसे पाठ पर चित्रण कर रहा है जो मसीहा को चित्रित करता है, वह राजा जिसे भगवान अपने दाहिने हाथ पर बैठने के लिए नियुक्त करेगा, जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक है, और अपने दुश्मनों पर शासन करता है, जो पॉल इन आध्यात्मिक शासकों और शक्तियों और अधिकारियों की पहचान करता है जो परमेश्वर के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण और दुष्ट और शत्रुतापूर्ण हैं। तो आपको यह जानना आवश्यक है, आपको उस पाठ को जानने की आवश्यकता होगी यदि वह किसी परीक्षा या उसके जैसा कुछ हुआ हो। आपको यह जानना होगा कि भजन 110 में पॉल की मसीह के आधिपत्य की समझ की पृष्ठभूमि है। एक अन्य पाठ भजन 8, शायद आपको इसका एहसास हो, लेकिन यह एक ऐसा भजन है जो वास्तव में सृजन पर वापस जाता है। और हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना प्रतापी है। आपने उन्हें बनाया है, यानी आदम और हव्वा, मानवता। यह उत्पत्ति 1 और 2 की बात कर रहा है। आपने उन्हें, मानवता को, स्वर्गदूतों से थोड़ा कमतर बना दिया है। तूने उन्हें महिमा और सम्मान का ताज पहनाया है। तूने उन्हें अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है, और तूने सब कुछ उनके पांवों के नीचे कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इब्रानियों का लेखक इस भजन को यीशु मसीह पर लागू करता है, और मुझे लगता है कि पॉल भी वही काम कर रहा है। तो फिर पॉल क्या कह रहा है? पुराने नियम की पूर्ति में यीशु अब अपने ब्रह्मांडीय शासन में प्रवेश कर चुका है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रभु के रूप में अपने शासन में प्रवेश कर चुका है। उसने पहले ही अपने शत्रुओं को हरा दिया है जो रोम नहीं है, बल्कि रोम के पीछे छिपी शक्तियों, शासकों और आध्यात्मिक शक्तियों को हरा चुका है। यीशु ने अब उन्हें हरा दिया है। अब उसे स्वर्ग में उठा लिया गया है, दाहिनी ओर बैठाया गया है, और वह इन आध्यात्मिक शक्तियों सहित पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है। अब आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसका रोमन साम्राज्य में अपना जीवन व्यतीत करने वाले ईसाइयों से क्या लेना देना है? मेरा मतलब है, मैं आपसे पूछता हूँ, पॉल ने तुरंत सामने आकर क्यों नहीं कहा, यीशु सीजर और रोमन साम्राज्य पर प्रभु है? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? इसके बजाय वह यह क्यों कहता है, यीशु ब्रह्मांड का शासक है और उसके शत्रु जिन्हें उसने हरा दिया है वे अब उसके पैरों के नीचे हैं? पैरों के नीचे होना वश में करने और जीतने का प्रतीक था। अब ये शत्रु स्वर्गीय लोकों में आध्यात्मिक शासक और अधिकारी हैं। पॉल ने यह क्यों नहीं कहा कि यीशु ने अब रोम और सीजर को अपने पैरों के नीचे रख दिया है? पॉल क्यों? फिर अगर मैं सही कह रहा हूं कि पॉल उन ईसाइयों को संबोधित कर रहा है जो वह उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वे रोमन शासन और रोमन प्राधिकरण के शत्रुतापूर्ण माहौल में अपना जीवन जी रहे हैं। यदि पॉल उन ईसाइयों को संबोधित कर रहा है तो यीशु को स्वर्ग में ऊंचा किया गया है और अपने दुश्मनों पर शासन करता है जो ये आध्यात्मिक शासक और अधिकारी और शक्तियां हैं के संदर्भ में बात करने से उसे क्या फायदा होगा? पौलुस यह क्यों नहीं कहता, यीशु रोम पर शासन करता है और सीजर अब उसके पैरों के नीचे है। सीजर उसके साथ जीवित है जबकि यीशु नहीं है और वह स्वयं ईश्वर है। ठीक है, तो आप सुझाव दे रहे हैं कि पॉल क्या करने की कोशिश कर रहा है। पॉल जो कुछ है उससे कहीं अधिक बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। वे दुनिया को देखते हैं और वे सीजर को सिंहासन पर देखते हैं, बस अभिनय में। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है यह अच्छा है। कोई अन्य विचार? पॉल इस तरह से बात क्यों कर सकता है? फिर आप सोचेंगे कि पॉल बाहर आएगा और कहेगा, ईसाइयों परेशान मत हो, चिंता मत करो और प्रोत्साहित हो, क्योंकि यीशु ने सीजर को हराया है और रोमन साम्राज्य को हराया है और यीशु रोम से बहुत ऊपर बैठा है और उसने उन्हें अपने पैरों के नीचे कर लिया है और अब यीशु सभी चीजों पर शासन करता है। पॉल ऐसा क्यों करता है? और मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सुझाव है। किसी और कारण से पॉल इस तरह से बात कर सकता है। इसके बजाय पौलुस यह क्यों कहता है, यीशु मसीह को इन आत्मिक शासकों और अधिकारियों से कहीं ऊपर उठाया गया है। फिर जब भी वह इफिसियों में शासकों और अधिकारियों और शक्तियों के बारे में बात करता है, तो मुझे लगता है कि वह इन दुष्ट आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में बात कर रहा है जो ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। यह इस विचार पर वापस जाता है कि पतन के बाद से शैतान ने आदम और हव्वा को बगीचे में प्रलोभित किया, दुनिया शैतान का साम्राज्य बन गई, वह अब इसका राजा और शासक है। आप उस विचार को नए नियम में कई स्थानों पर देखते हैं, और इसलिए यह शैतान और उसके दुष्ट प्राणी हैं जो ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। तो यीशु इफिसियों में यह दिलचस्प है, यीशु के बारे में बात करता है, या पॉल यीशु के ऊंचे होने और इन दुष्ट आध्यात्मिक प्राणियों को हराने के बारे में बात करता है? वह रोम पर यीशु के शासन के बारे में बात क्यों नहीं करता? मेरा मतलब है, निश्चित रूप से अगर मैं एक ईसाई हूं जो रोम में रोमन साम्राज्य में रहता है और इस शत्रुतापूर्ण माहौल में जहां रोम शासन करता है अपने विश्वास को जीने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि क्या मुझे रोमन साम्राज्य या यीशु के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, क्यों क्या पॉल इस तरह बात करेगा? उद्धारकर्ता यीशु, हर कोई सोचने लगा कि वह रोम को उखाड़ फेंकने जा रहा है, इसलिए उसने उन्हें रोम में रहने के लिए कहा है। ठीक है, अच्छा, हाँ, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। यदि आपने सुना कि उसने क्या कहा, तो उसने वैसा ही सुझाव दिया। क्या आपको मार्क का सुसमाचार याद है, जहां यीशु यह घोषणा नहीं करता था कि वह राजा और मसीहा है, क्योंकि लोग उसे गलत समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि वह रोम का सफाया करने और सीजर को गद्दी से हटाने आया है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जब आप यीशु के जीवन को देखते हैं, तो यीशु ने जो किया वह करने के लिए आया था। और यह दिलचस्प है कि सुसमाचार में वह जिस दुश्मन को हराने आया है, वह राक्षसों को निकाल रहा है, वह पीछा करता है। दूसरे शब्दों में, वह उन आध्यात्मिक शक्तियों के पीछे जाता है जो पृथ्वी पर भौतिक शक्तियों के पीछे छिपी हैं। और मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इफिसियों में भी यही कर रहा है। जैसा कि आपने कहा, वह नहीं चाहता कि पाठक यह सोचें कि वह रोम को सत्ता से हटाने आया है और मसीहा के रूप में उसने रोम को हरा दिया है। वास्तव में वे चारों ओर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि यह सच नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु ने जीत हासिल नहीं की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉल जो कह रहा है, यीशु ने हराकर जीत हासिल की है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि वे दुनिया अनुभवजन्य दुनिया को देखते हैं और रोम को नियंत्रण में देखते हैं। पॉल ने जो कहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि क्योंकि यीशु ने रोम के पीछे छिपी शक्तियों को हराकर पहले ही जीत हासिल कर ली है, अर्थात ये शत्रु आध्यात्मिक शासक। वास्तव में वह विचार था, आप कह सकते हैं ठीक है, यह क्लिंटन अर्नोल्ड के जादू इन आध्यात्मिक शक्तियों के प्रस्ताव जैसा लगता है, लेकिन वह विचार प्रकाशित वाक्य जैसी पुस्तकों में मौजूद था। जब आप रहस्योद्धाटन पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि यह जो कर रहा था वह दिखा रहा था कि रोमन दुनिया पहले ही हार चुकी थी। यीशु ने पहले ही जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसने बुराई की शक्तियों को हराकर ऐसा किया। इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि अक्सर प्रकाशित वाक्य जैसी पुस्तक में रोमन साम्राज्य को इन आध्यात्मिक राक्षसी प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है जो इसके पीछे छिपे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पॉल जो कर रहा है वह अपने पाठकों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखिए जब आप दुनिया में देखते हैं और आप रोम को नियंत्रण में देखते हैं और सीजर अभी भी सिंहासन पर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु हार गए हैं या वह आप हार गए हैं। वास्तव में यीशु ने विजय प्राप्त की है, वह स्वर्ग पर चढ़ गया है और ब्रह्मांड पर शासन करते हुए अपने सिंहासन पर बैठा है। उसने अपने शत्रुओं को हरा दिया है, लेकिन जिन शत्रुओं को उसने हराया है वे ये आध्यात्मिक शासक और अधिकारी हैं जो भौतिक शक्तियों के पीछे छिपे हैं। तो दूसरे शब्दों में हाँ, रोम अभी भी नियंत्रण में है और सीजर सिंहासन पर है, लेकिन उनके दिन अब गिने चुने रह गए हैं क्योंकि यीशु ने पहले ही दुष्ट शक्तियों को हरा दिया है। तो यह जो मानता है वह भौतिक दुनिया है जिसे कोई देखता है, पॉल कह रहा है कि भौतिक दुनिया के पीछे एक आध्यात्मिक दुनिया है जो किसी तरह यह निर्धारित करती है कि क्या चल रहा है। यीशु ने पहले ही आध्यात्मिक दुनिया में जीत हासिल कर ली है और भजन 8 और भजन 110 की पूर्ति में उन दुश्मनों को पहले ही हरा दिया है। तो जब वे रोमन साम्राज्य में अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें किस बात का डर है? उन्हें रोम के दावों से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। वे अपना जीवन परमेश्वर के लोगों के रूप में और साहस के साथ जी सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मसीह ने पहले ही आध्यात्मिक दुनिया में जीत हासिल कर ली है और भौतिक दुनिया भी जल्द ही जीत जाएगी। अब लौकिक सामंजस्य के संबंध में दो अन्य महत्वपूर्ण अंश, अध्याय 2:11-21। हालांकि पॉल यह भी कहना चाहता है कि यीशु ने न केवल आध्यात्मिक दुनिया में जीत हासिल की है, दूसरे शब्दों में न केवल आध्यात्मिक दुनिया में सामंजस्य स्थापित होना शुरू हो गया है बल्कि भौतिक दुनिया में भी सामंजस्य स्थापित होना शुरू हो गया है। याद रखें इफिसियों 1:10 में पॉल ने कहा था, भगवान की योजना स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी चीजों को समेटना है। खैर, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि यीशु ने पहले ही आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को हरा दिया है, इसलिए स्वर्ग का मेल होना शुरू हो गया है। लेकिन पृथ्वी का क्या? अध्याय 2:11-22 में पॉल इस लंबे खंड का वर्णन करता है जो दर्शाता है कि यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से, और यहाँ हम उस विषय पर लौटते हैं जिसे हमने पॉल के पत्रों और अधिनियमों में कई बार देखा है, यहूदी और गैर यहूदी रहे हैं मिलमिलाप हुआ, और पॉल उस भाषा का उपयोग करता है एक नए व्यक्ति में, एक नई मानवता में, एक शरीर में एक दूसरे के लिए मिलमिलाप करता है। तो वह ऐसा क्यों कहता है? वह बस यह प्रदर्शित कर रहा है कि सुलह की यह प्रक्रिया पहले से ही सांसारिक क्षेत्र में भगवान द्वारा दो विपरीत या पिछले लोगों जो पहले एक दूसरे के साथ दुश्मनी में थे, यहूदी और गैर यहूदी के बीच मिलमिलाप कर चुकी है। उसने अब उनका मिलमिलाप करा दिया है और उन्हें एक संकेत के रूप में सांसारिक क्षेत्र में एक साथ लाया है कि यह मिलमिलाप पहले ही हो चुका है। तो फिर इफिसियों जो दिखा रहे हैं वह यह है कि इस दिन अध्याय एक में इस दिन भगवान ने वादा किया था कि उनकी इच्छा के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी चीजें भगवान या यीशु मसीह के साथ मेल कर देंगी पहले ही शुरू हो चुकी है। यीशु को इन शासकों और अधिकारियों से ऊपर उठाकर और एक नई मानवता का निर्माण करके मानवता को एक शरीर में समेटकर लौकिक मिलमिलाप की यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। तो यह पहले से ही पॉल के संस्करण की तरह है लेकिन अभी तक नहीं। अब जाहिर है यह अभी तक अपने चरमोत्कर्ष और शिखर पर नहीं पहुंचा है जो कि यह भविष्य में करेगा, लेकिन यह पहले ही शुरू हो चुका है। उसी तरह राज्य पहले से ही आगे बढ़ रहा था और यीशु के मंत्रालय में काम कर रहा था, हालांकि यह अभी तक अपनी पूर्णता और पूर्णता में नहीं आया था। तो उसी तरह पॉल आश्वस्त है कि स्वर्ग और पृथ्वी में सभी चीजों का मसीह के साथ मिलमिलाप मसीह द्वारा इन शक्तियों ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक शक्तियों को हराने और मसीह द्वारा इस चर्च इस एक शरीर प्रक्रिया में मानवता को समेटने के माध्यम से पहले ही शुरू हो चुका है। सभी चीजों में सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे गति दी जा चुकी है। इससे हमें एक और दिलचस्प कविता अध्याय 3 और कविता 10 को समझने में मदद मिलती है, जहां पॉल फिर से यहूदी और अन्य जातियों के एक शरीर में मिलमिलाप का वर्णन कर रहा है और वह कहता है, हर किसी को यह दिखाने के लिए कि भगवान की योजना क्या है, छिपे हुए रहस्य की योजना क्या है युगों युगों से ईश्वर में, जिसने सभी चीजें बनाई, ताकि चर्च के माध्यम से, यह दिलचस्प है, चर्च के माध्यम से, जिसके बारे में पॉल ने अभी हमें बताया है कि यह यहूदियों और अन्य जातियों से मिलकर बना है या एक शरीर में एक दूसरे के साथ मिल मिलाप कर रहा है, ताकि चर्च के माध्यम से अपनी समृद्ध विविधता में परमेश्वर की बुद्धि को स्वर्गीय स्थानों के शासकों और अधिकारियों और शक्तियों के सामने प्रकट किया जा सकता है। पॉल ऐसा क्यों कहता है? मेरा मतलब है वह क्या कह रहा है? मेरा मतलब है संक्षेप में वह इस चर्च के माध्यम से कह रहा है कि भगवान ने यहूदी और गैर यहूदी को लाकर उन्हें एक दूसरे के साथ एक शरीर में मिलाकर बनाया है। चर्च के माध्यम से भगवान का ज्ञान अब इन शासकों और अधिकारियों को स्वर्ग में दिखाया गया है। मैं फिर से मानता हूं कि जब भी पॉल इफिसियों में शासकों शक्तियों अधिकारियों का उल्लेख करता है तो वह इन आध्यात्मिक दुष्ट प्राणियों के बारे में बात कर रहा है जो दुनिया के पीछे छिपे हुए हैं, जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य जैसी पुस्तकों में पढ़ा है। पॉल क्या कह रहा है जब वह कहता है कि चर्च जिसमें यहूदियों और अन्य जातियों ने एक दूसरे के साथ मिलमिलाप कर लिया है, चर्च के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियां भगवान की बुद्धि को देख सकती हैं? पॉल ऐसा क्यों कहता है? मेरा मतलब है इसमें दिलचस्पी क्यों होगी? चर्च जो एक मिलमिलाप वाली मानवता है, मिलमिलाप की इस प्रक्रिया का हिस्सा क्यों बनेगा? इन शासकों और अधिकारियों और स्वर्गीय क्षेत्रों में शक्तियों के लिए कोई दिलचस्पी क्यों होगी? ये आध्यात्मिक दुष्ट प्राणी जो भगवान के लोगों के लिए शत्रुतापूर्ण हैं, वह मसीह अब बहुत ऊपर बैठा है। चर्च को उनमें कोई दिलचस्पी क्यों होगी? उन्हें क्या देखना चाहिए? हाँ, यह ईश्वर की बुद्धि कहता है, लेकिन क्या उन्हें केवल यह कहना चाहिए, ओह देखो इन यहूदियों और अन्य जातियों को इस एक चर्च में रखकर ईश्वर कितना बुद्धिमान है, इसका इन बुरी शक्तियों से क्या लेना देना है? जब वे इस नई मानवता इस चर्च को देखते हैं जिसमें मिलमिलाप वाले यहूदियों और अन्य जातियों को एक नई मानवता में इस एक शरीर में शामिल किया गया है, तो यह आध्यात्मिक दुनिया में इन बुरी शत्रुतापूर्ण शक्तियों के लिए क्या करता है? यह सही है। यह एक प्रदर्शन है कि उनका समय समाप्त हो गया है। भगवान ने उन्हें हरा दिया है। लौकिक मेलमिलाप की यह प्रक्रिया, जिसका अर्थ इन बुरी शक्तियों के लिए उनकी हार है, जब वे यहूदी और अन्य जातियों से युक्त चर्च को एक शरीर में समेटते हुए देखते हैं, तो यह संकेत है कि उनकी हार पहले ही हो चुकी है और उनका समय समाप्त हो गया है। तो संक्षेप में कहें तो ब्रह्मांडीय मिलमिलाप के इस विषय में इफिसियों में क्या चल रहा है। सबसे पहले यह धारणा है कि आप इफिसियों में इसके संकेत देखते हैं, लेकिन पॉल सीधे सामने आकर इसे नहीं बताता है। धारणा यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का भौतिक और स्वर्गीय हिस्सा, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसे भगवान ने बनाया है, पाप के कारण अव्यवस्था या व्यवधान का सामना करना पड़ा है, और इसलिए पाप के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड अब इन दुष्ट शत्रु शक्तियों के नियंत्रण में है। यही कारण है कि यीशु आए और दुष्टात्माओं को निकाला। यह एक संकेत था कि दुनिया भर में शक्तियों, इन शत्रु शक्तियों का शासन अब टूट रहा था और भगवान का राज्य अब आक्रमण कर रहा था। लेकिन पॉल की धारणा यह है कि पाप के कारण पूरी दुनिया को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा है और इस पाप के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड भौतिक और गैर भौतिक इन बुरी आध्यात्मिक शक्तियों के शासन के अधीन है। जो शैतान और उसके राक्षस होंगे, इसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं। तो फिर भगवान का इरादा यह है कि अंततः पूरे ब्रह्मांड को वापस सही स्थिति में लाया जाना चाहिए, नंबर वन की समस्या का समाधान होना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड को पाप के बंधन और बुराई की शक्तियों से बचाया जाना चाहिए और इसे बहाल किया जाना चाहिए, और इसलिए परमेश्वर का इरादा यह है कि यह यीशु मसीह के माध्यम से होगा। फिर से अध्याय एक श्लोक 10 पर वापस जाएं। परमेश्वर की योजना यह है कि सभी चीजें मसीह के साथ मेल कर लेंगी। सभी चीजों का सारांश मसीह में होगा। पॉल इसी तरह आश्वस्त है कि क्रूस पर मसीह की मृत्यु के माध्यम से और उसके पुनरुत्थान और स्वर्ग में ऊंचा किए जाने के माध्यम से मसीह ने पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में सभी चीजों को अपने साथ समेटने की इस प्रक्रिया को शुरू और उद्घाटन कर दिया है। यीशु ने पहले ही इन बुरी शक्तियों को हरा दिया है। वह पहले से ही इन शासकों और अधिकारियों और शक्तियों से कहीं ऊपर भगवान के दाहिने हाथ पर उठाया गया है। उसने पहले से ही पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ समेटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन पॉल यह भी कहते हैं कि चर्च, यह नई मानवता, यह नई इकाई, यह शरीर जिसमें यहूदी और अन्य जाति शामिल हैं, जिनका एक साथ मेल हो गया है, चर्च पहली किस्त है और वह साधन है जिसके द्वारा पृथ्वी पर यह मेल मिलाप होगा। तो फिर मसीह ने न केवल बुराई की शक्तियों को हराकर स्वर्ग को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है, बल्कि मानवता को एकजुट करके, मानवता को बुराई की शक्तियों से बचाकर और उन्हें एक शरीर चर्च में एकजुट करके उन्होंने यह प्रक्रिया भी शुरू कर दी है पृथ्वी पर सभी चीजों में सामंजस्य बिठाने का। फिर यह पहले से ही भाग है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है इसे अभी भी अपनी पूर्णता और पूर्णता में घटित होना बाकी है। उसी तरह जैसे ईसा मसीह के आगमन के साथ राज्य पहले से ही मौजूद था, पुरुष और महिलाएं राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और भविष्य में इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति से पहले इसके शासन और इसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह पॉल आश्वस्त है कि सभी चीजों को मसीह के साथ मिलाने की यह प्रक्रिया स्वर्ग और पृथ्वी पर पहले ही शुरू हो चुकी है, भविष्य में किसी दिन इसके पूर्ण और अंतिम रूप से कार्यान्वित होने से पहले। और फिर पॉल इस तरह की बात क्यों करता है, वह चाहता है कि उसके पाठक रोमन साम्राज्य और उनकी स्थिति को इस संदर्भ में रखें। अब वे देख सकते हैं कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है और उन्हें रोम से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, और उनमें इस शत्रुतापूर्ण रोमन वातावरण और रोमन दुनिया में अपना जीवन जीने का साहस है, क्योंकि वे जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता है, वे अनुभवजन्य रूप से देखते हैं क्या कोई बिल्कुल अलग तस्वीर है। सुलह की एक प्रक्रिया है जहां मसीह ने पहले से ही उन शक्तियों को हरा दिया है जो किसी भी भौतिक अधिकार या किसी भी शक्ति के पीछे हैं, जिनका उन्हें रोमन साम्राज्य में पृथ्वी पर सामना करना होगा। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यहीं से पॉल को इस सारी शक्ति भाषा की धारणा और यीशु द्वारा इन आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को हराने की धारणा मिलती है। मुझे नहीं लगता कि यह जादू से आता है, मुझे लगता है कि यह पुराने नियम और पॉल की समझ से आता है, जैसा कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक में पाया जाता है कि भौतिक दुनिया के पीछे एक आध्यात्मिक दुनिया है जो इसे प्रभावित करती है और इसे निर्धारित करती है, और वह प्रदर्शित करना चाहता है कि यीशु ने पहले ही उस आध्यात्मिक दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। जो कुछ करना बाकी है वह पृथ्वी पर काम करना है, जो पहले से ही यीशु द्वारा यहूदियों और गैर यहूदियों को अपने सृजन एजेंट के रूप में एक शरीर में मिलाने और दुनिया में मेलमिलाप लाने के साथ शुरू हो चुका है। इसके बारे में कोई प्रश्न? मैं इफिसियों के अंतिम अध्याय को बहुत संक्षेप में देखना चाहता हूँ। यदि आप इफिसियों के बारे में कुछ भी जानते हैं तो संभवतः वह पाठ है जिस पर आपका दिमाग स्वतः ही चला जाता है। दूसरा अध्याय दो होगा। अध्याय दो में, अध्याय दो के ठीक मध्य में, जहाँ पॉल कहता है, अनुग्रह से हम विश्वास के माध्यम से बचाए गए हैं और यह आपकी ओर से नहीं है, यह ईश्वर का उपहार है, उन कार्यों का नहीं जिन पर कोई घमंड नहीं करेगा। हम में से बहुत से लोग उस पाठ से परिचित हैं। जो दिलचस्प बात यह है कि यह ईश्वर द्वारा हमें पाप के बंधन और बुराई की शक्तियों से बचाने के संदर्भ में आता है। इफिसियों के बारे में अब तक कोई प्रश्न? इफिसियों अध्याय 6 तथाकथित आध्यात्मिक युद्ध मार्ग के बारे में क्या, जहाँ अध्याय 6 में पुस्तक के अंत में पॉल अब युद्ध या युद्ध की कल्पना का उपयोग करके ईसाई जीवन का वर्णन करता है और यहाँ तक कि ईसाइयों को प्रतीकात्मक रूप से पहनने की आवश्यकता के रूप में चित्रित करता है, कवच के कुछ भाग या टुकड़े। तो वह श्लोक 10 से शुरू करते हुए शुरू करते हैं और अंत में वह शक्ति भाषा फिर से है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इस वर्तमान अंधकार के शासकों और अधिकारियों और ब्रह्मांडीय शक्तियों के विरुद्ध, बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। यह विचार फिर से प्रकाशित वाक्य में आपको मिलता है इस तथ्य के बारे में कि भौतिक दुनिया के पीछे इन बुरी शक्तियों द्वारा शासित आध्यात्मिक दुनिया है। दूसरे शब्दों में यह वापस नंबर 1 पर पहुंच जाता है। पाप के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड अब दुष्ट शक्तियों के अधीन और उनके शासन में है। और अब पॉल कहते हैं, इसलिए आपको इसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार रहना होगा। और फिर वह आगे कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार उठा लो कि बुरे दिन में सामना कर सको। इसलिए खड़े रहो और सत्य की अपनी कमर कस लो। तो यह कवच का पहला टुकड़ा है, आपकी कमर के चारों ओर सत्य की बेल्ट, और धर्म की झिलम पहन लो। अपने पैरों के जूते के रूप में वह पहने जो आपको शांति के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार करता है। इन सब के साथ विश्वास की ढाल उठाओ ताकि तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, और मोक्ष का हेलमेट उठाओ। अब प्रश्नों में से एक, वास्तव में दो प्रश्न हैं। पॉल को यह कवच भाषा और यह युद्ध भाषा कहाँ से मिलती है? फिर पॉल अपने पत्रों में ऐसा काफी करता है। वह ईसाई जीवन की तुलना भिन्न भिन्न से करेगा, वह भिन्न भिन्न रूपकों का प्रयोग करेगा, वह कई बार इसकी तुलना एथलेटिक स्पर्धाओं से करेगा, वह इसकी तुलना खेती और भवन निर्माण से करेगा। यहाँ उन्होंने ईसाई जीवन का वर्णन और चित्रण करने के लिए युद्ध भाषा का उपयोग किया है, और वह ईसाइयों को जरूरतमंद के रूप में वर्णित करता है क्योंकि वे इस तरह की स्थिति में रहते हैं, इन आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभुत्व वाले विश्व में। पॉल अब ईसाइयों को कवच के इन विभिन्न टुकड़ों को पहनने की आवश्यकता के रूप में वर्णित करता है, जिसे रूपक रूप से वह सत्य और विश्वास के रूप में पहचानता है, और धार्मिकता और शांति और मोक्ष। अब हमें इससे क्या लेना देना है? और फिर दूसरा प्रश्न यह है कि पुस्तक में अध्याय 6 कैसे कार्य करता है? क्या यह एक तरह का परिशिष्ट मात्र है? या दूसरे शब्दों में, क्या पॉल अध्याय 6 तक पहुंचता है और निर्णय लेता है, आप जानते हैं, मैंने आध्यात्मिक युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैंने ईसाइयों के धर्मनिष्ठ जीवन जीने, पवित्र जीवन जीने और यीशु मसीह का अनुसरण करने के बारे में बाकी सब कुछ कह दिया है, और अब मुझे आध्यात्मिक युद्ध के बारे में कुछ कहना चाहिए क्योंकि मैंने वास्तव में उस पर चर्चा नहीं की है। या हमें अध्याय 6 को कैसे समझना चाहिए? सबसे पहले, पॉल को अपने कवच की कल्पना कहां से मिली? कम से कम जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे हमेशा यही सिखाया जाता था और मेरे दिमाग में यह तस्वीर थी कि पॉल कहीं जेल में है। यह जेल की पत्रियों में से एक है, इसलिए इसका अर्थ समझ में आएगा। पॉल जेल में था और उसे एक रोमन सैनिक की जंजीरों से बांध दिया गया था। और जब वह यह लिख रहा था, तो वह ऊपर देखता और हेलमेट को देखता और मोक्ष का हेलमेट लिखता, ऊपर देखता और अपना कवच, धार्मिकता का कवच देखता। और वह मूल रूप से इस रोमन सैनिक का वर्णन कर रहा है जो शायद उसके पास खड़ा था या जिसे उसने देख लिया था। और यहीं से उसे अपने कवच की कल्पना मिलती है और यह समझ में आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि पॉल एक रोमन सैनिक की पोशाक और युद्ध पोशाक से अच्छी तरह परिचित था, लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूं कि पॉल को यह कहां मिलता है। इसके बजाय मैं एक बार फिर से आश्वस्त हूं कि पॉल पुराने नियम पर आधारित है। यशाया अध्याय 59 में लेखक ने दिलचस्प ढंग से ईश्वर का वर्णन किया है और यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यह ईश्वर का वर्णन है जो इसराइल के शत्रुओं से युद्ध करता है और लेखक कहता है, हे परमेश्वर, उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया है और अपने सिर पर उद्धार का टोप रखा है, उसने प्रतिशोध के वस्त्र पहन लिए। यहां एक और है, यशाया 52:7, पहाड़ों पर शांति की घोषणा करने वाले दूत के पैर कितने सुंदर हैं। क्या पौलुस ने सिर्फ यह नहीं कहा था कि अपने पैरों को शांति के सुसमाचार के साथ तैयार करो? तो मुझे लगता है कि पॉल जो कर रहा है, वह पुराने नियम को चित्रित कर रहा है और यह जान रहा है कि वह क्या करता है। विशेष रूप से इस कविता के प्रकाश में, यह कविता वही कवच कह रही है जिसका उपयोग भगवान ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए किया था। अब वही कवच है जिसे पॉल ईसाइयों को लेने के लिए कहता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे वह कह रहा हो, यह कवच आपके लिए उपलब्ध है और वैसे यह काम करता है। इसे यशाया अध्याय 59 में पहले ही आजमाया जा चुका है और यह काम करता है। तो फिर मुझे लगता है कि पॉल एक रोमन सैनिक पर इतना निर्भर नहीं है, लेकिन एक बार फिर वह यह प्रदर्शित कर रहा है कि जिस माध्यम से भगवान अपने दुश्मनों को हराते हैं, वही साधन है जिनके द्वारा भगवान के लोग अब इन बुरी आत्माओं और अधिकारियों पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वर्गीय दुनिया, पहले से ही लेकिन अभी तक नहीं तनाव पर ध्यान दें। अध्याय 1 में यीशु मसीह पहले ही इन शत्रुओं को हरा चुके हैं। अध्याय 1 में याद रखें, स्वर्ग में ऊपर उठाकर उसने पहले ही इन आध्यात्मिक शासकों और शक्तियों को हरा दिया है। लेकिन अभी तक ऐसा न होने के कारण अब हमें बुराई की शक्तियों को हराने और इस लौकिक मिलमिलाप को लाने की आज्ञा दी गई है। तो यह पहले से ही लेकिन अभी तक नहीं, यह संकेतात्मक और अनिवार्य है। संकेत यह है कि इसका उद्घाटन पहले ही हो चुका है। यह लौकिक मिलमिलाप, शक्तियों की यह हार ईसा की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पहले ही हो चुकी है। लेकिन अब अभी तक ऐसा न होने के कारण अनिवार्यता यह है कि हमें अभी भी इसे अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अध्याय 6 अलग है। यह एक अलग अध्याय नहीं है। ऐसा नहीं है कि पॉल अध्याय 6 और श्लोक 9 के द्वारा वह सब कुछ कहता है जो वह कहना चाहता है, और फिर ओह आइए आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बात करें। इसके बजाय यह पुस्तक का निष्कर्ष है। यह पॉल का वह सब कुछ कहने का तरीका है जो वह पहले 5 अध्यायों में पहले ही कह चुका है। वास्तव में कवच के उन सभी टुकड़ों, विश्वास और शांति और धार्मिकता और सत्य और सुसमाचार पर पहले ही इफिसियों में कई बार चर्चा की जा चुकी है। तो अध्याय 6 पूरी किताब का सारांश है। यह केवल अध्याय 1 से 5 को एक अलग लेंस के माध्यम से देखता है, उस ब्रह्मांडीय युद्ध के लेंस के माध्यम से जिसका अब ईसाई हिस्सा है। लेकिन फिर एकमात्र कारण यह है कि वे इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मसीह ने पहले ही अध्याय 1 में बुराई की शक्तियों को हराकर इस सार्वभौमिक मेलमिलाप की शुरुआत कर दी है। अब हमें भी ऐसा ही करना होगा। हालांकि इसके बारे में दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जब हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक युद्ध करने का क्या मतलब है, तो मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसमें राक्षसों को बाहर निकालने और शत्रुतापूर्ण अंधेरे की शक्तियों को बांधने जैसी चीजें शामिल नहीं हैं। जब हम आध्यात्मिक युद्ध के बारे में सोचते हैं, तो हम और वे चीजें जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से हम पर शैतानी हमलों के बारे में सोचते हैं, और कभी कभी हम शैतान के कब्जे और शैतान के प्रभाव जैसी चीजों के बारे में भी सोचते हैं, और विभिन्न तरीकों से इसे तोड़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन यह दिलचस्प है कि अगर मैंने जो कहा है वह सही है, तो पॉल अध्याय 6 को इफिसियों में वापस जोड़ता है अध्याय 1 से 5, ताकि कम से कम पॉल के लिए इफिसियों में आध्यात्मिक युद्ध करने का प्राथमिक तरीका विशिष्ट जीवन जीना है, मतभेद और विभाजन के बजाय शांति को बढ़ावा देने वाला जीवन जीने से। हम झूठ बोलने के बजाय सच बोलते हैं। अशुद्ध और अनैतिक रूप से जीने के बजाय हम धार्मिकता से युक्त जीवन जीते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अंधेरे की इन शक्तियों को एक झटका और हार देते हैं जिन्हें मसीह पहले ही हरा चुके हैं। इसलिए मुझे यह दिलचस्प लगता है कि कवच के वे सभी टुकड़े वे चीजें हैं जिनका पॉल ने वास्तव में इफिसियों में आरंभ में उल्लेख किया था। तो इसे कहने का एक और तरीका यह है कि जिस तरह से हम आध्यात्मिक युद्ध करते हैं, वह उस तरह की जीवन शैली जीना है जिसे पॉल ने इफिसियों के पहले 5 अध्यायों में व्यक्त किया है। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हम इसमें शामिल हो जाते हैं। पॉल कहते हैं, हम इस लौकिक लड़ाई का हिस्सा हैं जिसे मसीह ने पहले ही स्वर्गीय क्षेत्रों में जीत लिया है, लेकिन हम तब तक लड़ना जारी रखते हैं जब तक कि भविष्य में अभी तक नहीं आता है, जब सभी चीजें होती हैं, अंतः पूरी तरह से और पूरी तरह से मसीह के साथ मेल मिलाप हो गया। ठीक है, प्रश्न। ठीक है, हमारे पास कुछ मिनट बचे हैं, लेकिन परीक्षा के बारे में कोई प्रश्न है? मैं बस यह कहना चाहता हूं कि परीक्षा की अवधि और परीक्षा के प्रकार की दृष्टि से यह परीक्षा पिछली परीक्षा की तरह ही होगी। यह अलग सामग्री पर है। यह गॉस्पेल या ऐतिहासिक सामग्री में नहीं है। हमने सेमेस्टर की शुरुआत में इसके बारे में बात की थी। यह गलातियों के माध्यम से अधिनियमों पर है, और हर किसी के पास एक अध्ययन मार्गदर्शिका होनी चाहिए। यह ब्लैकबोर्ड पर है, लेकिन मैंने इसे आपको भी ईमेल किया है, तो कृपया अध्ययन मार्गदर्शिका देखें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया सोमवार से पहले मुझसे पूछें। यह न्यू टेस्टामेंट इतिहास और साहित्य पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन द्वारा इफिसियों की पुस्तक पर व्याख्यान हैं।